الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کلاس کے اندر ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھ رہی ہیں، اور ہماری جو کریکولم نصاب کی بک ہے وہ ہے معارف القرآن، حضرت مفتی مولانا محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ کی کمپائل کی ہوئی، اور اس کی جلد نمبر 3 میں سے ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں. تو پچھلی کلاس میں کافی لمبا وقت لگا کر کے ہم نے آیت نمبر 5 کی تفسیر پڑھنا مکمل کری تھی. آیت نمبر 5 جو ہے، اور اس سے پیچھے کی بھی جو آیات تھیں، یہ بڑی یعنی یونیک آیات ہیں، اور وہی چیز جو ہے وہ آگے ریپیٹ بھی ہو رہی ہے. ان کے اندر ایک بہت ہی خاص بات کیا ہے کہ ان میں ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے. تو سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی یا ایھا الذین آمنو سے فرمائی، اے ایمان والوں. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اور رسول ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی کامن سینس والی بات ہے کہ رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. تو رسول مان لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب رسول مان لیا؟ مطلب یہ کہ جو پیغام اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا وہ ہمارے آپ کے سب کے پروردگار کا پیغام ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے، اور وہ قابل اطاعت ہے، واجب الاطاعت ہے. اگر حکم ہے تو اس حکم کے اوپر آمننا و صدقنا کہنا، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر کوئی خبر دے رہے ہیں تو اس خبر کو تسلیم کرنا، اس کا انکار نہ کرنا. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو خبر ہوتی ہے کہ بھائی تمہیں ایسے پیدا کیا گیا، تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام پیدا کیا، پھر ہم نے جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیا آسمانوں کے اندر کہ ان کو سجدہ کرو، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر وہ آسمان سے زمین میں پہنچا دیے گئے، پھر ایسا ہوا، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ خبریں ہیں، یہ ساری کی ساری خبریں ہیں. تو خبروں کے اوپر عمل نہیں کرنا ہوتا، خبروں کی فرما برداری نہیں کرنی ہوتی، خبروں کی اطاعت نہیں کرنی ہوتی، خبروں کی کیا کرنی ہوتی ہے جی؟ تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے. صدق، صدق سے نکلا تصدیق، تو خبر کی تصدیق کرنی ہوتی. اطاعت کس چیز کی کرنی ہوتی ہے؟ حکم کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، کمانڈ. ٹھیک ہے، امر جس کو کہ عربی میں کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر خاص رسول کو ماننے والے، یعنی جنہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم خبر کی تصدیق کریں گے اور حکم کی اطاعت کریں گے، उन लोगों को खिताब फरमाया है, ठीक है। वरना तो अल्लाह ताला मुशरिकों को भी खिताब कर सकते हैं और करते हैं, काफिरों को भी खिताब करते हैं, मुनाफिकीन को भी खिताब करते हैं, सारी इंसानियत को भी खिताब करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे किसको खिताब कर रहे हैं? सिर्फ मानने वालों को खिताब कर रहे हैं। तो वही फिर अल्लाह ताला आगे भी कंटिन्यू करते हैं, और आयत नंबर 5 के अंदर, अगरचे के आयत नंबर 5 जो है वो या अय्युहल लज़ीना आमनू से शुरू नहीं हुई है, लेकिन यही पिछली आयात की कंटिन्यूएशन है जिसमें या अय्युहल लज़ीना से बात शुरू करी थी। तो इसमें जो है वो इंतहाई अहम जो एक हिस्सा था आयत नंबर 5 का, वो क्या था कि वमई यकफुर बिल ईमान फकद हबित अमल, वमई यकफुर, जिसने इनकार किया, ठीक है, जिसने इनकार किया, यकफुर यकफर कफर यकफुरु का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इनकार करना, किसी चीज को डिनाई करना, किसी चीज को इग्नोर कर देना कि नहीं दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या कोई चीज एग्जिस्ट करती है उसको छुपा देना, कि गोया कि आप उसको लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये तो नजर ही नहीं आ रही, कहाँ है, कौन सी चीज, भाई किस चीज की बात कर रहे हो तुम, ये तो नजर ही नहीं आ रही क्योंकि आपने छुपा दिया उसको। तो कुफर का ये सारे मानी है और सबका एक ही मतलब है, यानी एंड रिजल्ट सबका एक ही है। तो जिसने कुफर किया, डिनाई किया, किस चीज को? ईमान को। ईमान क्या चीज होती है? किस चीज को डिनाई किया, ठीक है, किस चीज का इनकार किया? नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक का इनकार किया, नबी अलैहिस्सलाम जो खबर लेकर आए थे उसकी तस्दीक का इनकार किया, यानी उसकी तकजीब करी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है, तो ये कहलाएगा यकफुर बिल ईमान। और दूसरी चीज क्या, जो भी हमने सुनी थी कि खबर के अलावा दूसरी चीज क्या होती है? अमर, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, दो किस्म के जुमले होते हैं। इंशाइया जुमले वही होते हैं जिनके अंदर अमर नहीं, ठीक है। तो ईमान की तकफीर की दूसरी शक्ल क्या है कि हुक्म का इनकार करना कि नहीं ये हुक्म नहीं है, ये हुक्म नहीं है, बल्कि हुक्म तो कुछ और है, जो नबी अलैहिस्सलाम है वो, जो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया वो नहीं है बल्कि कुछ और है या है ही नहीं, ठीक है। तो यकफुर बिल ईमान का मतलब ये हुआ कि तस्दीक का, खबर का इनकार कर देना या हुक्म का इनकार कर देना। तो अल्लाह ताला उसके बाद फिर इसकी जजा बताते हैं कि जिसने ऐसा किया वह मैं यकफुर बिल ईमान फकद हबत, तो उसने अपने सारे आमाल को जाया कर दिया, ठीक है, उसने अपने सारे अमाल को जाया कर दिया। वह हुआ फिर आखिरत मिनल खासरी, और आखिरत के दिन ये खसारा पाने वालों में से होगा, ये फायदा पाने वालों में से नहीं होगा, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर खास बात जो हमारे लिए है, क्योंकि ये सारी बातें ईमान वालों से हो रही है ना, ठीक है, तो अब ईमान वाला तो तस्दीक करता है और जो है वो अतात की हामी भरता है, और फिर उसके बाद क्या करता है? अमल करता है, अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, जकात देता है, सदका खैरात करता है, हज करता है, उम्रे करता है। तो उस अमल करने वालों को कहा जा रहा है फकत हबित अमल, तुमने जितने अमल किए हैं ना ये सारे के सारे जाया हो गए। अगर तुमने नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक में से किसी चीज का भी इनकार कर दिया, गोया कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम की विसारत का इनकार कर दिया, एक बात का भी इनकार कर देना, इसका मतलब ये कि आप नाउज बिल्ला नबी अलैहिस्सलाम को झूठा कह रहे हैं, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को झूठा कह रहे हैं, दैट्स इट, हबित अमल, जितने अमल तुमने किए हैं ना सब सब जीरो, सब जीरो, हबित। अच्छा, इन्होंने एक सवाल लिखे डायरेक्ट मैसेज में कि व्हाट इफ द पर्सन डजंट हैव कामिल एतमाद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वोंट ही बी कंसिडर्ड काफिर? What if the person doesn't have कामिल एतमाद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, won't he be considered काफिर? बहुत मुश्किल सवाल कर लेते हैं आप यार, तो हमारा ख्याल किया करें। कामिल एतमाद, ठीक है, तो आप कामिल एतमाद किस चीज को कहते हैं भाई? कामिल हमारे एक कजन के बेटे हैं, उन्होंने अपने कजन साहब ने अपने बेटे का नाम रखा कामिल। ठीक है, आप पता नहीं क्या मतलब था उनका, क्या कहना चाह रहे थे, बेटे का नाम कामिल रख दिया। तो वो तो कामिल नहीं है यार, वो तो बहुत ही नाकस किस्म का इंसान है हमारे जैसा, उसका नाम कामिल रख दिया। तो कामिल क्या चीज होती है? तो कामिल एतिमाद जो आपने लिखा, तो अगर उसको हम एतमाद के लफ्ज को जो है वो ईमान से रिप्लेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर ईमान की डिस्कशन हो रही है, तो कामिल ईमान की फिर तारीफ क्या होगी जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई? ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने बताई तारीफ, अब तो आपको याद हो ही गई होगी इंशाल्लाह, है कि मन अहब्बा लिल्लाहि व मन अबगाद लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फकद इस्तकमल ईमान। तो उसका ईमान, उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। तो ईमान के कामिल से मुराद जो है ना, यानी एतमाद कामिल हो या ईमान कामिल हो, तो उसकी जो तारीफ है ना, फिर वो इस तरीके से ली जाती है। ठीक है, कि वो हर काम जो कर रहा हो वो अल्लाह की खातिर कर रहा हो, मोहब्बत कर रहा है किसी से अल्लाह की खातिर, नफरत कर रहा है अल्लाह की खातिर। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका ईमान कामिल नहीं है, बल्कि उसका ईमान नाकस। ठीक है, ये तो आपको हमने बता दी हदीस से कामिल ईमान की डेफिनेशन। अब आपका जो सवाल है ना, वो है ईमान और कुफर से मुताल्लिक। ठीक है, कि अगर उसका एतमाद कामिल ना हो तो फिर वो काफिर है। तो उसका जवाब ये होगा कि अगर वो नबी अलैहिस्सलाम की किसी ऐसी बात के जिसका के हमें 100% यकीन के साथ पता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम ही ने फरमाई है, अगर उसके बारे में शक में मुबतला हो गया, ठीक है ना, शक का मतलब यह है कि दिल ही दिल में उसने डिनाई कर दिया उस चीज, दिल में डिनाई कर दिया, जुबान से कुछ नहीं कहा, दिल में डिनाई कर दिया उस चीज को, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो काफिर हो। ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं है, तो वो किसी को जब तक बताया गया नहीं तो उस वक्त तक पीपल वॉन्ट नो, बट इनसाइड वो काफिर हो चुका है और अल्लाह को पता है कि वो क्या हो चुका है, वो काफिर हो चुका है। लेकिन अगर उसने आउटवर्डली जुबान से भी इनकार कर दिया तो फिर इंसानों को भी पता चल जाएगा कि वो काफिर हो गया। ठीक है, अब उसके ऊपर चाहे आप फतवा लें या चाहे फतवा ना लें, लेकिन इंसानों को तो पता चल चुका है कि वो काफिर हो चुका है। तो ये काफिर होने के लिए जो है ना, वो या तो इंटरनली डिनाई करे या जुबान से भी डिनाई कर दे, दोनों सूरतों में वो काफिर हो जाता है अगर उसने कोई जरूरियात दीन, जरूरियात दीन क्या चीजें होती हैं जिनका कंफर्म पता होता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, ठीक है, उसका इनकार कर दे तो फिर वो काफिर हो जाता है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग, बट दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, तो भाई ईमान का की सलामती की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि हबित अमलुहू, अगर ईमान सलामत नहीं रहा हमारी किसी बेवकूफी की वजह से, तो फिर सब जाया हो जाएगा। और ये बात भी हम रिपीट करते चलें कि ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ना, ये दौर जो है वो ईमान ही के जाया हो जाने की मेहनत का दौर है। काफिर जो है वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं, सारे अपने असबाब इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी अपनी जो है वो ब्रेन पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में भी, मशीन में भी ट्रांसफर कर दिया है, मशीन लर्निंग के जरिए से सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मुसलमानों को कत्ल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, मुसलमानों के मुल्कों पे कब्जा करने के लिए? नहीं, मुसलमानों के मुल्कों पे कब्जा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, फिर किस लिए इस्तेमाल करें? मुसलमानों की दौलत पे कब्जा करने के लिए? नहीं, मुसलमानों की दौलत पे कब्जा करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? मुसलमानों का ईमान खराब करने के लिए, मुसलमानों को ईमान से महरूम करने के लिए वो सारी की सारी एफर्ट्स और सारी की सारी रिसोर्सेज लगा रहे हैं। ठीक है ना, और ऐसे लगा रहे हैं कि बरमना ऐलान करके लगा रहे हैं, ऐलान करके। ठीक है, लेकिन मुसलमानों का इतना बुरा हाल हो चुका है ईमान के मामले में कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वमन यकफुर बिल ईमान है ना, इसको अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? अगर आप में से कहें, अगर हम आपसे पूछें कि वमन यकफुर बिल ईमान का अंग्रेजी तर्जुमा नहीं मांग रहा मैं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो टर्म यूज हो रही है, ठीक है, जो कि एक्चुअली वो मैं यकफर बिल ईमान की क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन कहलाई, ठीक है, वो क्या है? दो अल्फाज में उसका जवाब दिया जा सकता है, ठीक है, अगर आप में से कोई पहले अटेम्प्ट कर ले तो अच्छा लगे, आपकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी उसके अंदर। वमई यकफुर, बल्कि यकफुर बिल ईमान, इसके लिए दो अंग्रेजी अल्फाज अगर आप संभाल करके बताएं इसका मतलब क्या है एज ऑफ टुडे। अच्छा, एब्राहमिक अकॉर्ड्स उन्होंने जवाब दिया। नहीं, वो बहुत ज्यादा आपने इसको टेक्निकल कर दिया है, एक बहुत ही जनरल किस्म की टर्म हम पूछ रहे हैं, ये तो बहुत ही टेक्निकल किस्म की आपने खास पॉलिटिकल अटेम्प्ट का आपने नाम बता दिया है ना, बहुत ही जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म जो है ना उसके लिए पता है क्या होगी? जनरल टर्म उसके लिए होगी मॉडर्न इस्लाम, मॉडर्न इस्लाम, ठीक है, जिसको के उर्दू या अरबी में क्या कहते हैं, तजद्दुद, ठीक है, तजद्दुद उसको कहते हैं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में जो है वो मॉडर्न इस्लाम कहते हैं और अरबी उर्दू के अंदर उसको तजद्दुद कहते हैं। तो तजद्दुद जो है ना, ये हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, या मॉडर्न इस्लाम होगा बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा मसला ही खत्म हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न इस्लाम जो जो चीज है ना, ये एक्चुअली यकफुर बिल ईमान, ये यकफुर बिल ईमान बन जाता है, ठीक है, इसी वजह से काफिर जो है वो बड़े यानी बेफिक्री के साथ ऐलान करते हैं कि हमारा जो है ना वो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा मुसलमानों के साथ जब वो मॉडर्नाइज्ड इस्लाम पे अमल करना शुरू कर देंगे। मॉडर्नाइज्ड इस्लाम पे जब मुसलमान अमल करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप, जैसे आज आप देख ही लें, ठीक है ना, आज आप देख लें कैसा जो है वो हक का साथ दे रहे हैं सारे के सारे काफिर, भाई सारे नॉन मुस्लिम्स, सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकन, सारे तो खैर नहीं मतलब, लेकिन फिर भी बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद, कैसे हक का साथ दे रहे हैं, कौन से वाले हक का साथ दे रहे हैं भाई, कौन से वाले हक का साथ दे रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न इस्लाम का साथ दे रहे हैं, असल इस्लाम का कोई भी साथ नहीं दे रहा है, सब का सब जो है वो मॉडर्न इस्लाम का साथ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इस्लाम से कोई मसला नहीं, ठीक है, और हमें अनफॉर्चुनेटली चूंकि पता ही कोई नहीं कि इस्लाम क्या चीज होती है, हम पता हम ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते कि इस्लाम जो होता है ना वो 21वीं सदी में मेरी जिंदगी में उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, तो इस वजह से हमें समझ में ही कोई नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, तो परेशान होना तो दूर की बात, हम तो खुश हो रहे हैं उल्टा इसके ऊपर, ठीक है, कि जो है वो इंसानियत तो जो है वो हमारे साथ हो गई है और हक के साथ हो गई है और जुल्म के खिलाफ जो है सारे इकट्ठे हो गए हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज है, ठीक है, तो बस अपने ईमान के लिए अल्लाह ताला से कम अज कम दुआ तो मांगे ना, तो दुआ भी उस चीज के लिए मांगी जाती है जिसकी फिक्र, इस चीज की फिक्र ही कोई नहीं है तो उसके लिए क्यों दुआ मांगेंगे भाई, ठीक है ना, बच्चा जो है वो आप उसकी सेहत के लिए दुआ मांगते रहते हैं, जब वो बीमार होता है तब उस आपकी फिक्र होती है ना, फिक्र होती है उसकी सेहत की, तब उसके लिए दुआ मांगते हैं, ठीक है, वरना तो आप कहते हैं मेरे बच्चे की अच्छी उम्र हो, अच्छी जिंदगी हो, अच्छा ये हो, अच्छा वो हो, सेहत के लिए तो दुआ नहीं मांगते ना, इसलिए कि सेहत तो आप समझ रहे हैं कि उसकी बिल्कुल ठीक है, तो क्यों मांगेंगे उसके लिए दुआ, तो वो तो जब 106 बुखार होगा, 105 बुखार होगा, या नाउज बिल्ला खुदा ना खासा किसी का बच्चा ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो है वो वेंटिलेटर पे पहुंच गया, तब दुआ मांगेंगे ना उसकी सेहत के लिए, क्योंकि अब पता है कि बस ये कल का मेहमान या आज का मेहमान चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, तब दुआ मांगेंगे उसके लिए, तो दुआ जो है ना ये मशरूत होती है फिक्र के साथ, फिक्र के साथ मशरूत होती है, अगर फिक्र नहीं तो दुआ नहीं, ये बेफिक्री की दुआएं कोई दुआ नहीं होती, ठीक है, इसी वजह से अच्छा खासा हमने आपका टाइम ले लिया खाली फिर एक अटेम्प्ट करने के लिए कि भाई फिक्रमंद हो जाना चाहिए, जल्द से कम अज कम दुआ तो कर सके इंसान के लिए अपने और अपने कम से कम आलो आयाल के लिए, तो ये तो हो गई बात पिछले क्लास से रिलेटेड आयत नंबर 5 की। अब आयत नंबर 6 और 7 जो आज तिलावत की गई है, तो उनमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो पीछे का ही मजमून कंटिन्यू कर रहे हैं, एक तो इस तरीके से ये या अय्युहल लज़ीना आमनू को मुखातब करके कर रहे हैं, ठीक है ना, ईमान वालों को मुखातब करके, और दूसरी कंटिन्यूएशन इसके अंदर हमें क्या नजर आती है कि पीछे भी जो बात हो रही थी वो तहारत से मुतालिक ही हो रही थी, अलयौमा उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, कि आज के दिन हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है तय्यिबात, पाकीजा चीजें, पाकीज़गी। और इसी पाकीज़गी को आगे फरमाते हैं इन आयात के अंदर, या अय्युहल लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाती फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ठीक है, व अय्दियकुम इला अल-मराफ़िक़ वामसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इला अल-कअबैन व इन कुंतुम जुबुनन जुनुबन फ़तत्ताहरू, ठीक है, तहारत पाकीज़गी, इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, मुतत्ताहिरीन, ठीक है, खूब पाक साफ रहने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं, तवाबीन और मुतत्ताहिरीन, ठीक है, तो अल्लाह ताला कितना जो है वो ईमान वालों को तहारत, तहारत, तुम खाओ अपने अंदर भी जो चीजें उतार रहे हो ना अपने इंटरनल सिस्टम के अंदर वो भी ताहिर होनी चाहिए, ठीक है, और जो तुम बाहर से तुम्हारी स्किन है, तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारे कपड़े हैं, वो भी ताहिर होने चाहिए, पाकीजा होने चाहिए, ठीक है, तो पाकीजगी को अल्लाह ताला ने डिफाइन किया और फिर उसकी हमसे एक्सपेक्टेशन की है, और अगर तुम किसी भी वजह से नापाक हो जाओ तो फिर कैसे पाक हो, उसका तरीका बता रहे हैं कि ए ईमान वालों, या यूं नजीना आम इज़ा कुमतुम इला सलाती, जब तुम खड़े हो, जब तुम उठो नमाज की तरफ, ठीक है, कामा यकूमू उठना खड़ा होना, जैसे नमाज में क्याम होता है खड़े होकर के जो आप पढ़ते हैं वो क्याम करना कहलाता है, तो कुमतुम जब तुम खड़े हो, यहाँ पे खड़े होने का मतलब नहीं है कि पहले लेटे हुए थे तब खड़े हो, नहीं, खड़े हुए थे ना पहले से, अब तुमने इरादा किया है नमाज पढ़ने का, तो कुमतुम का यहाँ पे मतलब इरादा करना होगा नमाज का, इला सलाती नमाज के लिए, फ़ग़सिलू वुजूहकुम तो गुसल कर लो किस चीज का, अपने चेहरों का, धो लो, यहाँ पे गुसल का मतलब क्या है, धो लो, वुजूहकुम वज चेहरे को कहते हैं, वुजूह चेहरों, एक बंदे के एक ज्यादा चेहरे नहीं होते यहाँ पर, क्योंकि सारे ईमान वालों को मुखातब है, इस वजह से चेहरे, वुजूहकुम, और अईदियकुम व अईदियकुम अपने हाथों को, इलल मराफिक, मराफिक, मराफिक कहते हैं कोहनी, ठीक है, वो जॉइंट होता है बोन जॉइंट, शोल्डर को जो है वो आपके आर्म के साथ जो कनेक्ट करता है या फिर रिस्ट के साथ बिलाखिर वो जाके कनेक्ट होता है, तो उसको सब जानते हैं कोहनी कहा जाता है, तो हाथों को शोल्डर जॉइंट तक मत धो, मराफिक तक धो, वमसहू बिरुउसिकुम और मसह करो, मसह की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके अंदर कोई गीली सरफेस जो होती है वो किसी ड्राई सरफेस के ऊपर फेर दी जाती है, ठीक है, गुसल की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके अंदर के एक तो पूरी की पूरी वो सरफेस जिसको के गुसल करने का हुक्म दिया जा रहा है वो सरफेस गीली हो जाए, और उसमें से कुछ ड्रॉप्स जो है ना, फुकहा ने इसकी मिनिमम लिमिट लिखी 2 ड्रॉप्स, ठीक है, 2 ड्रॉप्स जो है वो गिर भी जाए, यानी नॉट जस्ट मसा बल्कि वॉशिंग की डेफिनेशन में ये आएगा, अगर 2 ड्रॉप्स जो है वो गिर भी जाए, तो वमसहू बिरुउसिकुम अपने सरों को, ठीक है, अपने सर के ऊपर मसाह कर लो, व अर्जुलकुम इलल काबैन और अपने पाओं को, ठीक है, अर्जुलकुम पाओं की तारीफ, रिजल काबाइन तक, काबाइन कहते हैं टखनों तक, वो जो काबा काबा का लफ्ज भी काब से है, और काबा को काबा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर एक उभरी हुई जगह थी, ये बिल्डिंग तो बाद में बनाई गई है ना, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो बिल्डिंग बना दी उन्होंने, फिर वो टूट गई, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तुम वहां पे जाकर के दोबारा से बिल्डिंग बना दो, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो उसको भी तोड़ ताड़ करके जो है वो दोबारा से बनाया गया, दोबारा 5 दफा शायद किताबों में लिखा है कि काबतुल्ला को तोड़ करके बिल्डिंग दोबारा से बनाई गई, ठीक है। लेकिन असलन जो है ना वो बस एक उभरी हुई जगह थी, अल्लाह ताला ने पॉइंट आउट कर दिया अपने फरिश्तों के जरिए से या जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कि यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर है, यहाँ पर मेरी खसूसी तजल्लियात ज़ातिया नुजूल करती हैं, इस तरफ तुमने रुख करके इबादत करनी है। ठीक है, तो इस तरह से वो काबा हो गया। तो अब हमारे पैर के अंदर भी एक उभरी हुई हड्डी होती है फीट के बिल्कुल ऊपर, उसको काबाइन, क्योंकि वो दो होती है, दो पैरों के अंदर दो होती है। तो अपने पैरों को तुम क्या कर लो, वमसहु बिरुउसकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन या अर्जुलकुम इलल काबैन, एक जेर जबर का फर्क है, उससे जो है वो मानी बदल जाता है। अगर अर्जुलकुम बोलेंगे तो ये क्या होगा कि ये फ़ग़सिलु जो फेल है ये उसका मफ़ऊल बन रहा है। ठीक है, उगसुलू असल में फेल क्या है, उगसुल, ठीक है, यानी धो। अब इस फेल का एक तो होता है डूअर, यानी वर्ब का एक डूअर होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो वर्ब अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मफूल कहा जाता है। और अरबी जुबान के अंदर जो मफूल होता है वो हालत नसब के अंदर होता है। क्या मतलब कि उसके आखिरी लेटर के ऊपर जबर होता है, अगर वो सिंगुलर टेंस है तो आखिरी लेटर के ऊपर जबर होता है। ठीक है, तो अर्जुनकुम का मतलब यह है कि इसका जो फाइल है ना, सॉरी इसका जो फेल है, फेल अमर उसुलू, ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि अपने पैरों को धो। और अगर अर्जुनिकुम होता यानी नाम के नीचे जेर होता तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि बेरुसिकुम के अंदर जो बा है वो हर्फ जर है, वो इसको हालत जर मिला। हालत जर कैसे नजर आती है, लास्ट लेटर के नीचे जेर उससे नजर आती है। ठीक है, तो अगर इसको अर्जुनिकुम पढ़ेंगे तो फिर क्या मतलब होगा, तो उलमा या तुलबा हैं वो तो आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर इस एक्सप्लेनेशन की बिना पर खाली कोई बताने की कोशिश करे बहुत ही अच्छा हो जाए। अगर अर्जुनिकुम पढ़ेंगे तो फिर मतलब क्या होगा कि बा इसके ऊपर अप्लाई, बा इसके ऊपर अप्लाई होता है। तो बा जो है उसका फेले अमर क्या है, बा से पहले फेले अमर अलग है, इमसहू मसाह करो, मसाह करो, ठीक है, अपने पैरों पर मसाह करो। लेकिन जो सहाबा की कसरत जिस किरात के ऊपर मुज्तमा है वो किरात क्या है कुरान मजीद की, जैसे हम पूरे तफसील पढ़ चुके हैं पूरी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की उलूमुल कुरान की किताब के अंदर, ये किरात के मौलू को तफसील के साथ पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो जो राजह किरात है वो है अर्जुनकुम, अर्जुनकुम, ठीक है, और एक शाज किरात है अर्जुनकुम, ठीक है, जिसको कि उम्मत ने नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो राजह किरात के मुताबिक फिर हुक्म क्या है, वो अपने पैर, और जो शाज तिरात जिसको के उम्मत, हम तो भाई अहले सुन्ना वाल जमात है ना, जमात का जिसके ऊपर इत्तेफाक हो जाए उसी के ऊपर अमल करेंगे, तो जमात का तो इत्तेफाक इस पर नहीं है, इस पर अर्जुलेकुम के ऊपर। तो जो अर्जुलेकुम वाले कहते हैं ना, वो कहते हैं जी बस मसा करो, बस मसा करो पैर, ठीक है, अहले सुन्ना वाले इसके ऊपर एग्री नहीं होते हैं कि नहीं जी यहाँ पे मसा करने का हुक्म नहीं है पैरों के लिए, मसा करने का हुक्म तो सर के लिए, पैरों के लिए तो उसलू का हुक्म। ठीक है, ये आपके सामने थोड़ी सी तफसील बस इसलिए रखी है ताकि आपको जो है वो जेर जबर की अहमियत का जो है वो अंदाजा हो, और अहले सुन्ना वाल जमात के टॉपिक को एक दफा फिर आपके सामने खोल दिया जाए ताकि इसकी अहमियत आपके सामने वाजह हो जाए, और ये जो मसा वसा के चक्कर है फिर वो एक अलग तफसील है इसके अंदर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब खास मौकों पर मसा फरमाया बस उन्हीं के तरीके के ऊपर मसा किया था, वरना नहीं, वरना मसा नहीं किया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ही ने हमें कुरान मजीद भी बताया, और नबी अलैहिस्सलाम का फ़ेल जो है वो भी, वो जो जुनैद जमशेद साहब का माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त नात है कि उनका हाँ नहीं कह देना, कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा, कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम किसी चीज को हाँ कह दिया और वो साबित हो गई कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने हाँ कहा है, तो उसका हुक्म बिल्कुल कुरान के जैसा। और नबी अलैहिस्सलाम ने किसी चीज को ना कह दिया तो अगर कंफर्म हो जाए तवातुर के साथ कि हाँ वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने ना कहा है, तो वो हदीस भी यानी नबी अलैहिस्सलाम को वाला ना कहना भी कुरान के जैसे। ठीक है, तो अर्जुलकुम नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि कुरान में तो नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, और जो मसाह किया तो मसाह नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ खुफ के ऊपर, तो खुफ जो लेदर का बना होता है या खुफ जैसी क्वालिटीज वाला कोई सॉक्स होगा तो उसके ऊपर मसा करना नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस से साबित है जो कि तवातुर हदीस, वो तवातुर हदीस है। अगर कोई और किस्म का सॉक्स होगा तो भाई कुरान उसके ऊपर ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, बहरहाल ओनली शिया से दिस। हाँ ये वाली जो करात है वो तो शियाओं के दरमियान ये राज है। ठीक है, और दूसरी अहले सुन्ना और जमात में भी अगर है भी तो वो शाज ही कहलाएगी ना। ठीक है, तो बहरा वम सहु रूसकुम अर्जुलकुम इलल काबैन, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये आयत वुजू हो गई, आयत वुजू के वुजू के अंदर ये अल्लाह ताला ने चार हुक्म फरमाए हैं, तो ये चार फराइज वुजू हो गए, और बाकी जो चीजें होती हैं वुजू के अंदर फिर वो वुजू की सुन्नतें कहलाएंगी, वुजू के जो है वो मुस्तहबात कहलाएंगे। ठीक है, फराइज यही चार है, मुंह को धोना, हाथों को कोहनियों तक धोना, सर के ऊपर मसाह करना और पैरों को काबाइन तक धोना, ये चार फराइज होकर वुजू की। वह इन कुन तुम जुनुबन, और अगर तुम हो हालते जनाबत के अंदर, फतहरू तो खूब अच्छे से तुम गुसल कर लो। ठीक है, ये जो फतहरू है ना, खूब अच्छी तरीके से पाक हो जाओ, ये अरबी वर्ब्स की जो है ना ये बाबे तफाउल है, तकबला या तकबरू, इतहरा या तहरू। ठीक है, उसको फिर बहुत सारी उसके अंदर पे इदगाम और तब्दील वगैरह करके ये इतहरू इस तरह से बन जाता है। ठीक है, बहरहाल तकबल तकबलू बाप से ही ये है, ये फिर जहां तक देखा है, तो अगर तुम हालत जनाबत में हो तो फिर अच्छे से तुम तहारत हासिल करो, जिसका के मफहूम सुन्नत से पता चलता है कि पूरा गुसूल करो, गुसूल के फराइज के साथ पूरा गुसूल करो, खाली गुसूल के फराइज का मतलब साबुन और तौलिया नहीं होता। ठीक है, बल्कि मुंह के अंदर पानी डालना और गरारा करना और नाक के अंदर पानी चढ़ाना, ठीक है, और नाक में से पानी छिनक करके बाहर निकालना और उंगली से जो है वो मतलब अंदर डाल कर, यानी मुंह के अंदर और नाक के अंदर तक पानी पहुंचाना, और उसके अलावा बाल अगर तुम्हारे ऐसे हैं वो कि ब्रेडेड नहीं है तो बाल के एक एक जड़ तक जो है वो पानी पहुंचना चाहिए, जो कि जब आप ऊपर से अच्छी तरह से पानी डालते हैं तो पहुंच ही जाता है, तो पूरे स्किन के ऊपर पानी पहुंचाना, मुंह के अंदर पानी पहुंचाना और नाक के अंदर पानी पहुंचाना, ये तीन गुस्ल के फराइज हैं, अगर इनमें से एक भी रह गया तो गुसल नहीं और जान पाक नहीं हालत जनाबत के। तो अगर तुम हालत जनाबत में हो तो तुम छह से अपने आपको पाक करो। वह इन कुन तुम, ये इन जो है ना पिछली इसमें भी और यहाँ पर भी अगर इन शर्तिया होता है ये, तो इन कुन तुम मरदा, और अगर तुम हो मरदा यानी हालत मर्ज में हो, बीमार हो, औ या अला सफरिन सफर पर हो, अला पर और सफर ट्रैवल सफर यानी जो शरी सफर की मिकदार है, औ जा अहदुम मिनकुम, या तुम में से कोई एक, तुम में से कोई, कोई एक नहीं तुम में से कोई आए, मिनल गायत, ठीक है, तो यानी जाए जरूरत से यानी बाथरूम से करके वापस आ रहा है, ठीक है, अपनी फिजिकल नीड को पूरा करके वापस आ रहा है गायत, तो औ या लामस्तुम अन्निसा, औरतों को तुमने छुआ हो, ठीक है, औरतों को छुआ हो यानी बीवी के साथ जो है मिस्री वगैरह मामला किया हो, खाली छूने से वजू हमारे नजदीक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, वरना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती, तो अलामस तुम उन्नीसा कि तुम पास गए हो औरतों के, फलम तजिदु मा अन बस नहीं तुम पाओ, वजदा यजिदू का मतलब होता है पाना, टू हैव समथिंग अवेलेबल, लम तजिदू नहीं है तुम्हारे पास अवेलेबल, माअन पानी, फतयम्ममू सईदन तय्यबन, तो तुम कसद कर लो, तयम्मम यतयम्ममू का मतलब सन तर्जुमे में क्या बनता है कि कसद कर लो, लेकिन इस्तिलाही तौर पर सुन्नत से हमें पता चला कि तयम्मुम का बकायदा एक तरीका होता है कि पाकीज़ा मिट्टी के ऊपर इस तरह से हाथ मार करके, फिर उसके बाद मुंह के ऊपर एक दफा मार लिया, फिर उसके बाद हाथ मार करके अपने कोहनियों तक गया, अपने उस मसा कर लिया, मिट्टी से मिट्टी का डस्ट जो होती है उसे आपने मसा कर लिया, इसको तयम्मुम कहा जाता है शरीयत की इस्तिलाह में। फमसहु बिवुजूहकुम, तो तुम मल लो अपने चेहरों को, वह ईदी कुमिन और अपने हाथों को उससे, ठीक है, यानी सईदन तय्यबन से तुम अपने तय्यम की तारीफ कुरान मजीद ने खुद ही फरमा दी कि मसा कर लेना चेहरे को और जो है वो मसा कर लेना हाथों का, ठीक है। मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज, मा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला का कोई इरादा नहीं है, अल्लाह ताला डज नॉट डिजायर लियजअला के तुम पर हो, लियजअला अलैकुम के हो जाए तुम्हारे ऊपर, मिन हरज कोई हरज, ठीक है। वैसे तो नमाज पढ़ने में भी हरज होता है, अच्छा खासा इंसान कंटिन्यूएशन के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है, एकदम से सारे थॉट्स को ब्रेक करना पड़ जाता है और जाके नमाज पढ़नी होती है, अगर मस्जिद करीब है तो विद इन ईयर शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर है तो बिल्कुल बाकायदा मस्जिद जा करके नमाज पढ़ना वाजिब है, वरना जो है वो कम अज कम जमात की हालत में, जमात की शक्ल में मर्दों के लिए वाजिब है नमाज पढ़ना, ये तो बड़ा हरज का काम है भाई। अच्छा मीटिंग हो रही है, बड़ी जबरदस्त एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है और अभी जो है ना वो डिसाइड करके हमें $1 मिलियन का जो है वो कोटेशन मिलने वाली है, या $1 मिलियन सॉरी $1 मिलियन का हमें कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, इधर जो है वो नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया, जाओ भाई भाई आरसरा, बड़ा हरज है भाई इसके अंदर, है ना। फजर के वक्त ओहो सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, रात को जो है वो मुश्किल से सोए हैं और ये हुआ है वो हुआ है, उससे ज्यादा हरज और क्या हो सकता है। लियजअलैकुम मिन हरज मा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला तो इरादा नहीं करता हरज का, तो जी अब तो फिर हमारी अकल क्या कहेगी, जब भी कोई मसला हो जस्ट लीव, नमाज छोड़ दो, और फजर तो रोजाना ही छोड़ दिया करो क्योंकि फजर में तो वैसे ही हरज होता है, ठीक है। तो नहीं, इसको एब्सोल्युटली नहीं लिया जाएगा, इसको सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिया जाएगा, ठीक है, कि इस कॉन्टेक्स्ट में जबकि पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ना ये नहीं कि अब मारे मारे फिरो और इधर भी जाओ और कोई दरिया तलाश करो, उधर जाओ कोई लेक तलाश करो, या जो है वो पानी बनाओ H2 और O को मिला करके लेबोरेटरी के अंदर पानी बनाओ, या जो है वो आसमान से बारिश बरसाओ या कुछ देखो, नहीं, बल्कि ठीक है। तो मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुताहिरक, बल्कि और लेकिन वो तो इरादा करता है कि तुम्हें पाकीजा कर दे, वलियुतिम्म नेमतहु और तमाम कर ले, मुकम्मल कर ले नेमत को तुम पर, अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर ले, अलैकुम, ठीक है, नेमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुर, ताकि तुम शुक्र अदा करो, ठीक है, कि उसने कितना आसान दीन बनाया है, ये आसानी की डेफिनेशन अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है, अगर हमें दे देते तो फिर तो जो हमारी मर्जी होती, नमाज पढ़नी मर्जी होती, हम कहते ये आसान है, ठीक है ना, अच्छा ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी पड़ेगी, चलो दड़ा दड़ा दड़ जो है ना नमाज पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना, तो हम जो है ना अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को छोड़ करके नमाज, यार ये बड़ा आसान काम है, नहीं मुसल्ला बिछाओ दबा दब दबा दब नमाज पढ़ना शुरू कर दो, या दूसरी तरफ ये होता कि अगर जो है वो नमाज ही है और जो है वो दूसरे काम जो है वो हमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हम कहते हैं यार नमाज को छोड़ो ये मुश्किल है कोई और काम कर, अगर हमारे नफ्स पे छोड़ देते तो हमने तो फिर ये गुलिया बनाना था दीन का, जैसे कि ईसाइयों ने भी नहीं बनाया होगा, ठीक है, वैसा हमने गुलिया बनाना था दीन का, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमारे ऊपर नहीं छोड़ दिया, वरना हर बंदे का अपना एक अलग दीन होता, ठीक है ना, दीन इस्लाम फिर नबी अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन ना होता, बल्कि एवरी इंडिविजुअल मैन वुमेन चाइल्ड ओल्ड पर्सन एनीवन विल हैव हिज ओन और हर ओन दीन, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने जिस चीज को आसान कहा वही आसान है, क्योंकि उसने मुझे बनाया है, मैंने खुद अपने आप को नहीं बनाया। वो जो कहते हैं कि तुम्हारे लिए आसान है, वो आसान है, और फिर उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ठीक है। ये हमें दुनिया में किसी काम के लिए भेजा गया। वज़कुरू निअमतुल्लाह, वज़कुरू निअमतुल्लाह, और तुम अल्लाह ताला की नेमतों का को याद करो, ठीक है। उज़कुरू, याद करो अल्लाह ताला की नेमतों को, अलैकुम, जो तुम्हारे ऊपर है, वा मीसाक़हू, और उसके साथ किया हुआ मीसाक। मीसाक किसको कहते हैं? अहद, अहद, ठीक है, जो तुमने उसके साथ जो है वो अकॉर्ड किया था, अग्रीमेंट किया था, उसको मीसाक कहते हैं। अल्लज़ी वासाकुम बिही, जो तुमसे ठहराया था, ठीक है, अहद को तुम यानी वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम वा मीसाक, यानी याद करो उसके साथ किए हुए अहद को, अल्लज़ी वासाकुम बिही, जो तुमसे ठहराया था, जो तुम्हारे ऊपर वो यानी ये तुमसे वादा लिया गया, बिही उसके साथ, अल्लाह के साथ। इज कुल तुम समिअना व अतअना, जब तुमने कहा था हमने सुना और हमने अताअत की। समिअना व अताअना वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, ठीक है। अब मैंने आपने तो कभी नहीं कहा समिअना व अताअना, हमें तो इसका मतलब ही नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम आगे तफसील के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। समिअना, अभी तो टाइम भी मुकम्मल हो गया। समिअना व अताअना, जब तुमने कहा था ना समिअना व अताअना वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, यानी अल्लाह ताला का तक्वा इख्तियार करो। इन अल्लाह अलीम बिज़ात सुदूर, बेशक अल्लाह ताला पूरा इल्म रखने वाला है जो सीनों में है। सीनों में क्या है? दिल है। दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ये ख्यालात रखे हैं, बेसिकली हमारी हमारे अकल के अंदर, जो कि हमारे रूह का हिस्सा है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने सारे ख्यालात रखे हैं ना। अल्लाह ताला वो सब जानता है, जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारी अकल में है, जो तुम्हारी रूह में है, जो तुम्हारे अंदर है, सब कुछ अल्लाह ताला जानने वाला है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो आज की क्लास हम रोकते हैं। रबते आयात और खुलासे तफसीर, जो कि इस आयत के लिए सिर्फ खुलासे तफसीर ही तक रखा, और फिर मसाले आयत के नहीं रखे हैं। ऐसे तो बहुत सारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो है मजीद हम कुरान से तफसीर में पढ़ लेंगे। किसी को कोई सवाल हो या कोई कमेंट वगैरह हो, चैट विंडो पे लेकर के आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ताला ने दिल में बात डाली थी, तफसीर तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि आजिज ना तो हाफिज है और ना जो है वो ऐसा पूरा कुरान मजीद की तफसीर पहले से तैयार करके और सोच समझ करके फिर आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। पता है दिन में डाला कि जी मर्दों को सूरह मायदा पढ़ाना शुरू कर दो, औरतों को सूरह अनाम पढ़ाना शुरू कर दो, और दोनों सूरतें भी इस वजह से क्योंकि एक ही किताब, कहीं सफर पे जाएंगे तो खाली वॉल्यूम थ्री थ्री उठा के चले जाएंगे, अगर दो वॉल्यूम्स के अंदर सूरतें होती तो फिर दो वॉल्यूम्स उठा उठा करके सफर करना पड़ता, अपने एक ही वॉल्यूम में दोनों सूरतें सेलेक्ट कर ली। तो पढ़ने जब शुरू किया ना, तब समझ में आया है कि शायद अल्लाह ताला की यही हिकमत थी कि जिस दौर जिस जमाने से तुम गुजर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए इस वक्त है ना ये डायरेक्ट अहकाम जो हैं, ईमान से मुताल पर अल्लाह के अहकाम से मुताल, इनको जानना और इनको मानना तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए एब्सोल्यूटली और अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट, ठीक है। अपने इस बात को समझने की और उसके मुताबिक अपने मन को ढालने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।